वेदों की संख्या चार है, ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास को है। ऋग्वेद, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिनमें 11 बालखिल्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है, यानी बाद में जोड़ा गया। नौवें मंडल में सोम की चर्चा है, या नौवां मंडल पूर्णतः सोम के लिए समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिसमें सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य प्रमुख माने गए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया। ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच का संघर्ष का उल्लेख है। इसमें प्रसिद्ध दाशराग्य युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद में जंगल की देवी के रूप में आरण्यनी का उल्लेख मिलता है। इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोहित जैसे नामों से पुकारा गया है। अग्नि को पथिकृत अर्थात पथ का निर्माता कहा गया है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लिखित है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। सामवेद, सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों को गायन करने वाले पुरोहित उद्गात कहलाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित अर्ध्यु कहलाते थे। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्राविधियों की चर्चा है। चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। रत्नेनो वैदिक अधिकारी यानी की चर्चा भी यजुर्वेद में मिलती है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्ववा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। सम्राट शब्द का उल्लेख भी मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। उपवेद, उपवेद वेदों के परिशिष्ट हैं, जिनके माध्यम से वेद तथा तकनीकी बातों को स्पष्टता मिलती है। सुश्रुत तथा भाव प्रकाश ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना। कालांतर में स्थापत्य वेद तथा शिल्प शास्त्र शास्त्र को भी उपवेदों की श्रेणी में रखा गया। वेदांग, वेदों की क्लिष्टता यानी कठिनता को कम करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा की सबसे प्रामाणिक रचना प्रातिशाख्य सूत्र है। इसमें शुद्ध उच्चारण की पद्धति बताई गई है। कल्प, यज्ञों के संपादन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हैं। श्रौत सूत्र तथा गृह सूत्र कल्प की रचनाएं हैं। व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये गद्य में है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ऐतरेय ने की थी। आरण्यक ग्रंथ, ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। इनके नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान हैं। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं ऐतरेय, शंखायन, बृहदारण्य, छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद, वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ एकांत में प्राप्त ज्ञान है। उपनिषदों में आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म जैसे गूढ़ दार्शनिक मतों को समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, जिस कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। बृहदारण्य, छांदोग्य, कठ, मंडूक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद हैं। यम तथा नचिकेता के बीच संवाद की कथा कठोपनिषद में वर्णित है। श्वेत केतु एवं उसके पिता का संवाद छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 एवं महापुराणों की संख्या 18 है। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण तथा धर्मशास्त्र आते हैं। स्मृति ग्रंथों में सामान्य जीवन के आचार विचार तथा नियमों की चर्चा है। हिंदू धर्म पर स्मृति ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में हुई थी। पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को है। मत्स्य, वायु, वामन, मार्कंडेय, विष्णु इत्यादि प्रमुख पुराण हैं। रामायण तथा महाभारत धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता या सहस्त्र सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। श्रीमद् भगवद् गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। षड् दर्शन, वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज तथा दर्शन को दिशा देने वाले ग्रंथ भी हैं, जिनसे भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है। इनमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। ये निम्न है: सांख्य, जिसके प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय गौतम, योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण।